शब्दार्थ इस प्रकार है, आप मेरे पीछे दोहराएं, यत् चूंकि स अनुबंधे काश में बंधने से असति इस तरह होकर देह स्थूल शरीर गेहे घर में ममा मेरा अहम मैं इति इस प्रकार ऊढ़ महान गंभीर दुराग्रहाणां अवांछित सुप्ता हुंसां मनुष्यति सुदूरं काफी दूर वसतः रहते हुए अपि यद्यपि पुर्यां शरीर में भजेमा पूजा करें तद इसलिए ते तुम्हारे भगवन हे भगवान पदब्जं चरण कमल। यहाँ पे जो ते है इसका अनुवाद आपके होना चाहिए क्योंकि भगवान के लिए बोल रहे हैं ना, तो समान सूचक हमेशा भगवान के लिए शब्द प्रयोग करने चाहिए। तो इसका अनुवाद है तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की, हे प्रभु जो लोग नश्वर शरीर तथा बंधु बांधवों के प्रति अवांछित उत्सुकता के द्वारा पाशपद हैं और जो लोग मेरा तथा मैं के विचारों से बंधे हुए हैं वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते, यद्यपि आपके चरण कमल उनके अपने ही शरीरों में स्थित होते हैं, किंतु हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। जीवन का संपूर्ण वैदिक दर्शन यही है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के भौतिक बंधन से छुटकारा पाया जाए, जिसके कारण मनुष्य कष्टमय गर्भित जीवन बिताता रहता है। गर्भित का मतलब घृणित। यह भौतिक शरीर तब तक चलता जाता है जब तक मनुष्य भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की मिथ्या धारणा से विरत नहीं हो जाता। भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की यह प्रेरणा मेरा तथा मैं का बोध है। मैं सारे विश्व का सर्वे सर्वा हूँ, मेरे पास बहुत सी वस्तुएं हैं और मैं अधिक वस्तुओं का स्वामी बनूंगा। संपत्ति तथा शिक्षा के मामले में मुझसे बढ़कर कौन हो सकता है? मैं स्वामी हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मेरे अतिरिक्त और है ही कौन? ये सारे विचार अहम मम दर्शन अर्थात मैं ही सब कुछ हूँ को प्रतिबिंबित करते हैं। ऐसी जीवन धारणा से संचालित व्यक्ति भव बंधन से कभी मुक्ति नहीं पा सकते, किंतु यदि कोई केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए राजी हो सके तो संसार के कष्टों से निरंतर तिरस्कृत व्यक्ति भी बंधन से छुटकारा पा सकता है। इस कलयुग में कृष्ण कथा सुनने की प्रक्रिया अवांछित पारिवारिक स्नेह से छुटकारा पाने और इस तरह जीवन में स्थायी स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे प्रभावशाली साधन है। कलयुग पाप कर्म फलों से ओतप्रोत है और लोग इस युग के गुणों में अधिकाधिक लिप्त हैं, किंतु कृष्ण कथा के श्रवण तथा कीर्तन मात्र से मनुष्य का भगवत धाम वापस जाना सुनिश्चित है। अतः मनुष्यों को सभी तरह से एकमात्र कृष्ण कथा सुनने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें सारे कष्टों से छुटकारा मिल सके। ओम ज्ञान हरे राम हरे राम 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 हरे। तो यहाँ पर प्रसंग चल रहा है कि विदुर जी मैत्रेय जी से मिले हरिद्वार में और उन्होंने उनसे भक्ति के विषय में और संसार के विषय में अनेक प्रश्न पूछे और इसी अध्याय के तीसरे स्कंद के पांचवें अध्याय के पांचवें श्लोक में विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा था कि संसार की सृष्टि कैसे होती है, तो मैत्रेय जी उसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार महातत्व बनता है, महातत्व से छूटे अहंकार से आकाश बनता है, जो वायु अग्नि जल पृथ्वी ये सारे पदार्थ जो है अस्तित्व में आते हैं, और किस प्रकार छूटे अहंकार जो प्रकृति के तीन गुणों से जब प्रतिक्रिया होती है तो अनेक वस्तुओं का अस्तित्व आता है। जब झूठा अहंकार सत्व गुण से प्रतिक्रिया करता है तो देवी देवताओं की उत्पत्ति होती है। देवी देवता जो है ये भी चाहे सत्व गुण में है लेकिन फिर भी भौतिक गुणों से बंधे हुए हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई तो भगवान देवी देवताओं को बनाते हैं, उनकी सृष्टि करते हैं कि वो प्रकृति के संचालन में भगवान की मदद कर सके। लेकिन जब देवी देवता की सृष्टि हुई तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हम लोग भगवान की सेवा में लगे, हमारे लिए क्या कर्तव्य है। तो देवी देवताओं ने भगवान की प्रार्थना करना शुरू किया। सो भगवान की प्रार्थना करते हुए देवी देवता भगवान के चरण पत्रों का गुणगान कर रहे हैं। सो ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम कोई भी कार्य करना चाहें चाहे वो भौतिक हो चाहे अध्यात्म, हमें हमेशा भगवान की कृपा की याचना करनी चाहिए, हमेशा भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा से ही किसी कार्य में भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अगर भगवान की इच्छा नहीं हो, भगवान की कृपा नहीं हो तो कितना ही हम प्रयास कर रहे हैं कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भौतिक कार्य करने में भगवान को प्रार्थना करना आवश्यक है, आध्यात्मिक कार्य में भी भगवान को प्रार्थना करना परम आवश्यक है। जब भक्त लोग भगवान की सेवा में जुड़ते हैं और विभिन्न प्रकार से भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो वो सेवा भगवान को प्रसन्न कर सके उसके लिए भी भगवान से ही उनकी कृपा की याचना की जाती है। अगर हम सोचें कि आध्यात्मिक कार्य स्वतः भगवान को प्रसन्न कर देंगे तो वो सफल नहीं है। जब तक भगवान से प्रार्थना नहीं की जाएगी, विनीत भाव से जब तक सेवा नहीं की जाएगी, भगवान को प्रसन्न करने की तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम कोई भी कार्य करें हमेशा याचना को चेतना के साथ उस कार्य को संपन्न करें। और यहाँ पर जो देवी देवता है वो कह रहे हैं कि भगवान के जो चरण कमल है सबके हृदय में स्थित है, सबके हृदय में भगवान स्थित है। और भगवान भगवद गीता में भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, ईश्वर सर्वभूताना हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगवान सबके हृदय में विराजमान है लेकिन हर कोई भगवान के चरण कमलों के दर्शन नहीं कर सकता। सो ऐसा क्यों है कि भगवान के चरण कमल हृदय में है लेकिन दर्शन नहीं कर पाते? ऐसा इस कारण है योग माया समानता। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि मैं हरेक को दर्शन नहीं देता, क्यों नहीं देते? योग माया समानता, भगवान अपने आप को योग माया के पर्दे से ढक देते हैं। भगवान इसलिए ढक लेते हैं क्योंकि जो भगवत विमुखी है, जो भगवान से विमुख है, भगवान आपको कभी भी दर्शन देके अनुग्रहित नहीं करते। भगवान केवल और केवल अपने भक्तों को दर्शन करते हैं। सो यहाँ पर आप कह सकते हो कि हम शास्त्रों में देखते हैं कि अनेक असुरों ने भगवान के दर्शन किया, अनेक असुरों ने भगवान को देखा। जो भी भगवान को मारने आ रहा था हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध में देखते हैं, जो भी भगवान को मारने आ रहा था भगवान को तो देख ही रहा था। सो इसके उत्तर में हमारे आचार्य कहते हैं, पश्यन अभी न पश्यति, देख कर भी जो असुर है जो भगवान के भक्त नहीं है वो देख कर भी भगवान को नहीं देख सकते। भगवान को देखने का अर्थ है भगवान को उनकी पूरी महिमा से युक्त देखना, भगवान को एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में देखना, भगवान का दर्शन नहीं। भगवान को देखने का मतलब है ब्रह्मा जी जिस प्रकार भगवान को देख रहे हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिनादि गोविंद सर्वकार कि भगवान ईश्वर नहीं है, भगवान परमेश्वर है। जितने भी तथाकथित ईश्वर हम इस संसार में देख सकते हैं, चाहे वो ब्रह्मा जी हो चाहे शिव, उन सब के में ईश्वर कृष्ण है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के लिए ईश्वर शब्द प्रयोग मान करके परम ईश्वर शब्द का प्रयोग किया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कि अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो जिस प्रकार भक्त भगवान के दर्शन करते हैं उसी प्रकार भगवान के दर्शन करना चाहिए। और ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि भगवान के दर्शन हृदय में किस प्रकार किया जा सकता है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रेमांजन चरित भक्ति विरोचित है ना संता सदैव हृदय जो संत है वो हमेशा हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं। क्यों कर पाते हैं वो? क्योंकि प्रेमांजन क्षुभित भक्ति विमोचन है, क्योंकि उनके हृदय में भक्ति का सुरमा लगा हुआ है। भक्ति प्रेम का अर्थ है सेवा। अगर कोई व्यक्ति भक्ति या प्रेम का कोई और अर्थ निकाले तो वो अर्थ बिल्कुल ही गलत होगा। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम करने का अर्थ है जो उसको अच्छा लगे उसी तरह व्यवहार करना। भक्ति का अर्थ है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तो जो भी हम जहाँ पर भी शास्त्रों में भक्ति या प्रेम शब्द का प्रयोग हुआ है हमें उसे मतलब समझना चाहिए कि यहाँ पर उसका तात्पर्य सेवा है, उसके अतिरिक्त कुछ और तात्पर्य लेने से विरोधाभास आ सकते हैं। अनुकूल भाव से सेवा करना है, प्रतिकूल भाव से अगर हमने भगवान के बारे में सोचा तो भी हमें लाभ होगा लेकिन उसको भक्ति नहीं कहा जा सकता। भक्ति में अनुकूलता भगवान के प्रति भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो अगर हम हृदय में देख सकें भगवान को तो उसको देखने का तरीका जो है ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बता रहे हैं, भगवान के चरण कमलों को तीर्थ पद कहा जाता है। तीर्थ पद का अर्थ है जहाँ पर भी भगवान के चरण कमल है वो जगह तीर्थ स्थान बन जाती है। इसी प्रकार जो भगवान के भक्त हैं उनको भी तीर्थ भूता कहा जाता है। जो भगवान के भक्त हैं वो जिस स्थान पर भी जाएंगे वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। इसकी पुष्टि स्वयं दृष्टि महाराज भागवत में कर रहे हैं जब वो विदुर जी से मिले, और युधिष्ठिर महाराज ने विदुर जी के दर्शन करते हुए उनको बोला कि भवत निदान भावता तीर्थ भूता स्वयं गुरु कि हे गुरु जी आप स्वयं तीर्थ स्थान है, आपको तीर्थ स्थान पर जाने की क्या आवश्यकता है और क्यों क्यों जो विदुर जी हैं या विदुर जी जैसे भक्त हैं वो क्यों स्वयं तीर्थ स्थान के समान है, क्योंकि अंतस्थ है गदाधिकार, क्योंकि उनके हृदय में हमेशा भगवान गदाधिकार अर्थात भगवान कृष्ण हमेशा भगवान कृष्ण विराजमान रहते हैं। तीर्थ ही कुर्वती तीर्थान, और ये जो वो जितने भी महात्मा हैं ये सब महात्मा जहाँ पर भी जाएंगे उस स्थान को तीर्थ स्थान में बदल देते हैं। इसका जीवन उदाहरण हम श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र में देख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए इतने वृद्धावस्था में, और श्रील प्रभुपाद ने स्वयं कहा कि जो अमेरिका है ये उग्र स्थान है, बहुत सारी सुविधाएं हैं लेकिन वो सारी सुविधाएं आत्मतृप्ति इंद्रिय तृप्ति पर ही आधारित है और इसका उग्र परिणाम होने वाला है। और श्रील प्रभुपाद अगर हम देखें तो जब वो जहाज से जा भी रहे थे वैश्य जब जा रहे थे अमेरिका तो पूरा रास्ता वो भगवान के प्रति याचना करते रहे, भगवान को प्रार्थना करते रहे, और उन्होंने बोला काष्ट मेरे पुत्र था नचा से मनते। श्रील प्रभुपाद की बहुत ही प्रसिद्ध प्रार्थना है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझमें कुछ भी योग्यता नहीं है, मैं तो काठ की पुतली हूँ, काठ की पुतली स्वतः कुछ भी कार्य नहीं कर सकती, लेकिन अगर कोई बहुत ही दक्ष कठपुतली नचाने वाला व्यक्ति उस काठ की पुतली का जो भार है अपने हाथ में ले ले तो वही मिर्ची काठ की पुतली बहुत अच्छे से नृत्य कर सकती है। सो इसी प्रकार श्री प्रभुपाद ने भगवान से प्रार्थना की कि मुझ में कुछ भी योग्यता नहीं है, मैं तो काठ की पुतली की तरह मिर्ची हूँ, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आप अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए अपने शुद्ध भक्त के वचन को सिद्ध करने के लिए और चैतन्य भाग लो, क्योंकि आपने स्वयं कहा कि इस पूरी पृथ्वी में सभी नगर और ग्रामों में मेरे नाम का प्रचार होगा, तो अपनी उन भविष्यवाणी को सिद्ध करने के लिए आप जैसे भी चाहें मेरा प्रयोग कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद को अद्वितीय अद्भुत विलक्षण सफलता प्राप्त हुई, लेकिन सफलता प्राप्त होने पर भी श्रील प्रभुपाद ने कभी भी उस सफलता का श्रेय नहीं लिया। उन्होंने हमेशा यही कहा कि ये जो सफलता है यह सफलता मेरे गुरु महाराज की कृपा से संभव है, मेरा इसमें कुछ भी योगदान नहीं है, मैं तो केवल एक डाकिये की तरह उनका संदेश यहाँ पर देने आया हूँ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस चेतना के साथ ही भक्ति में जुड़ा जाए, अन्य किसी भी चेतना से अगर हम कार्य करेंगे कुछ भी स्वार्थ रहेगा हमारा तो हम भक्ति में बहुत अधिक समय तक टिके नहीं रह पाएंगे। और हम देखते हैं कि इस कौन संस्था में भक्ति में अनेक लोग होते हैं लेकिन बहुत से लोग कुछ समय बाद या अनेक सालों के बाद भी 10-20 साल जुड़े रहने पर भी भक्ति में फिर भी वो भक्ति को छोड़कर चले जाते हैं। इसमें किसी अन्य को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, कमी अपने में निकालना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वार्थ अपना निजी स्वार्थ रहता है और निजी स्वार्थ के चलते जो व्यक्ति है वो भक्ति को छोड़कर चला जाता है, भगवान उसकी भक्ति को ढक देते हैं। भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, जिस व्यक्ति ने जितना भी भगवान की सेवा की वो भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं नेहा भी प्रकाश प्रत्यवाय कि भक्ति का ना तो नाश होता है और ना ही उसमें कमी होती है। लेकिन अगर निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर अगर सेवा में जुड़ा गया तो वो बहुत सारे गलतियाँ हो सकती हैं, दूसरे भक्तों के प्रति अपराध हो सकते हैं और उनके चलते भगवान उस भक्ति को ढक देते हैं। और जो महत्वपूर्ण बात इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद कृष्ण कथा पर बहुत जोर दे रहे हैं। कई बार मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि जो कृष्ण कथा हम सुन रहे हैं, हम अपनी भौतिक इंद्रियों से सुन रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये सारे शब्द भौतिक ही हैं, तो किस प्रकार हम भौतिक इंद्रियों से भौतिक शब्दों को सुन के आध्यात्मिक जगत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? तो इसके उत्तर में चैतन्य महाप्रभु इसका वर्णन करते हैं शिक्षाष्टकम के दूसरे श्लोक में। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान ने बहुत कृपा करके अपनी सारी शक्तियाँ कृष्ण नाम और कृष्ण कथा में निवेशित कर दी, तो भौतिक प्रतीत होने पर भी इन शब्दों में भगवान के दिव्य नामों में और कृष्ण कथा में इतनी शक्ति है कि वो हमारे भौतिक इंद्रियों को शुद्ध कर सके और भगवान के दिव्य चरण कमलों में अनुराग उत्पन्न कर सके। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्त जुड़ते हैं और बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी भगवान का नाम लेने भगवान की कथा कृष्ण कथा सुनने के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होती। तो चैतन्य महाप्रभु इसका उत्तर देते हैं कि आखिर क्यों, ऐसा क्या कारण है कि उन दिव्य नामों का उच्चारण करके पूरे कर्तव्य के साथ हमने भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण भी किया और कृष्ण कथा भी सुनी, फिर भी हमारी रुचि उत्पन्न नहीं हो। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दुर्दैव ये दुर्भाग्य कि हमने इतना श्रवण किया, इतना कीर्तन किया, फिर भी भगवान के नामों को जपने में हमारे रुचि नहीं उत्पन्न। ये जो दुर्दैव है, ये दुर्दैव क्या है? ये दुर्दैव इस श्लोक में बताया गया है अहम मुमेति देहात्म। जो भक्त देहात बुद्धि में रहते हुए हमेशा अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते हुए अगर आध्यात्मिक कार्य में जुड़ता है तो वांछित प्रगति नहीं हो पाती और सुनने पर भी उसके हृदय में कुछ परिवर्तन नहीं होता। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं धृतराष्ट्र के प्रसंग में। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी को भेजा हस्तिनापुर कि जाओ आप जाकर धृतराष्ट्र जी को समझाओ कि अपने भतीजों के प्रति पक्षपात करना अच्छी बात नहीं है, राजा के लिए तो पूरी प्रजा संतान के समान और भाई की संतान तो अपनी संतान ही मानी जाती है, तो आप जो आपके अपने पुत्र हैं और पांडवों में कोई भी भेदभाव ना करें। तो अक्रूर जी वहाँ पर गए हस्तिनापुर और वहाँ पर काफ़ी दिन लगाए हुए पूरी स्थिति का जायजा लिया और बाद में धृतराष्ट्र को समझाया, उनको नीति वचन किया और सारी बात कह चुकने के बाद धृतराष्ट्र अक्रूर जी को बोला कि आपने जो भी वचन कहे बहुत अच्छे, मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन आपकी बातें मेरे हृदय में टिक नहीं रही। आपकी बात ऐसे है जैसे बादलों में बिजली कौंधती है, तो बिजली कौंधती है कुछ क्षण के लिए और फिर लुप्त हो जाती है। तो आपकी बात मेरे हृदय में एक बार प्रवेश तो किया लेकिन वहाँ पर टिक नहीं पाई। क्यों टिक नहीं पाई? तो इसके उत्तर में श्रील प्रभुपाद उन प्रसंग में उत्तर देते हैं कि क्योंकि धृतराष्ट्र ग्रह में भी थे, अपने परिवार में पूरी तरह से आसक्त थे। इस प्रकार सुनने के बाद भी, अच्छा अच्छे वचन सुनने के बाद भी उनका हृदय परिवर्तन नहीं हो सका। सो अगर हम कृष्ण कथा सुनते हैं और बार बार श्रवण भी करते हैं, लेकिन अगर हम अपने हृदय में वैराग्य उत्पन्न नहीं करें, अगर हम अपने हृदय में दीनता का भाव नहीं लेते हैं, तो अनेक बार सुनने पर भी हमारे हृदय में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो ये परम आवश्यक है कि हम जब भी कृष्ण कथा सुने तो ये सोच के सुने कि ये कथा, ये उपदेश सिर्फ मेरे और मेरे लिए दिए जा रहे हैं। मैं ही सबसे पतित व्यक्ति हूँ और मेरा उद्धार करने के लिए कृष्ण कथा सुनाई जा रही है। और कृष्ण कथा सुनाने का जो उद्देश्य है वो है मेरे हृदय की जो ग्रंथि, जो इतनी जोर से गांठ बंधी हुई है, उस गांठ को काट दिया जाए, उस गांठ को खोल दिया जाए, जिससे कि मैं भगवान के चरण पदों में अनुराग उत्पन्न कर सकूं। यदि हम इस चेतना से कृष्ण कथा का श्रवण नहीं करेंगे तो बार बार सुनने पर भी हम पर कुछ असर नहीं होगा। यहीं पर हम विराम देते हैं। अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। माया और योग माया में क्या भेद है? माया और योग माया का विस्तार है माया। भगवान की जो शक्ति आध्यात्मिक जगत में प्रकट होती है तो योग माया के नाम से प्रसिद्ध होती है, और भगवान की वही शक्ति जब भौतिक जगत में प्रकट होती है तो उनका विकृत रूप होता है, उसका अर्थ होता है माया। माया का अर्थ है उन वस्तुओं को महत्व देना जो बिल्कुल ही बेकार है, कुछ जिनका कुछ भी योगदान किसी के जीवन में नहीं है, लेकिन उन्हीं वस्तुओं को महत्व देना, भगवान से विमुख करके, भगवान से अलग करके वस्तुओं को देखने का प्रयास माया है। योग माया लोगों को भगवान की सेवा में लगाती है, लेकिन जो माया है, जिनको महामाया या बहिरंगा शक्ति बोलते हैं, उनके पास वो भी भगवान की सेवा में लगी है, लेकिन उनको ऐसी सेवा मिली हुई है कि उनकी कोई भी प्रशंसा नहीं कर पाता। जो माया देवी है वो भी भगवान की सेवा कर रही है, जो भगवान से विमुख लोग हैं उनको वो इस तरह उलझाए रखती है कि वो भगवान को परेशान। जो भगवत विमुख लोग हैं, जो अभक्त हैं, असुर हैं, वो बहुत बार प्रार्थना करने पर भी भगवान की शरण नहीं होती, वो इसलिए नहीं लेते क्योंकि माया उन्हें विभिन्न अन्य कार्यों में उलझाए रखती है। तो यद्यपि देखने में लगता है कि माया बहुत बुरी है, वास्तव में माया बुरी नहीं है, हमारी अपनी चेतना, हमारी अपनी इच्छा, जो हम अपनी इच्छा से भगवान से विमुख रहना चाहते हैं, माया उसमें केवल सहायता प्रदान कर रही है। लेकिन अगर हम अपनी चेतना को बदलते हैं तो वही माया जीव को भगवान की सेवा में लगाने में सहायता करेगी। तो अगर हम बोलें कि योग माया अच्छी है और माया खराब है, तो ये बहुत ही अच्छा उत्तर नहीं है। माया भी अच्छी है और योग माया भी अच्छी है, कमी है तो हम हॉर्डलेस माइंड आप प्रश्न मुझको दोहरा दीजिए। माता जी का प्रश्न है कि ये 36वें श्लोक से पूछ रहे कि वायु में दो गुण होते हैं, आकाश में एक गुण होता है, सो और पृथ्वी में पांच गुण होते हैं, तो इसमें क्या भेद है, इसको कैसे समझा जा सकता है। तो हमने पिछले जो क्लास थी उसमें हमने इस पर चर्चा किया था कि झूठा अहंकार जब भगवान उसको उत्तेजित करते हैं तो उसमें से आकाश की उत्पत्ति होती है और आकाश में सिर्फ एक ही गुण होता है, शब्द का। और जब आकाश में भगवान दूसरा गुण निवेशित कर देते हैं स्पर्श का, तो वायु में बदल जाती है। और जब वायु में भगवान आकार का जो दृश्य का आकार का जब भगवान गुण निवेशित कर देते हैं तो वो अग्नि में बदल जाते हैं, और अग्नि में जब स्वाद का गुण प्रदर्श कर देते हैं तो वो जल में बदल जाते हैं, और जल में जब गंध का गुण भगवान डालते हैं तो वो पृथ्वी में बदल जाते हैं। तो इसी प्रकार महत्त्व से और उससे झूठा अहंकार प्रकट होता है, और झूठे अहंकार से इस प्रकार पांच स्थूल भौतिक तत्वों की उत्पत्ति होती है। तो जब हम बोलते हैं कि वायु में दो गुण होते हैं, तो वायु में शब्द और स्पर्श का गुण होता है, आकाश इधर में एक गुण होता है और वो होता है शब्द का। इसी प्रकार अग्नि में तीन गुण होते हैं, शब्द स्पर्श और आकार, और जल में चार गुण होते हैं, शब्द स्पर्श आकार और स्वाद, और पृथ्वी में पांचों गुण पाए जाते हैं जिसमें गंध भी सम्मिलित होती है। और जब प्रलय का समय होता है तो भगवान पृथ्वी में से गंध निकाल लेते हैं तो वो जल बन जाता है, जल में से स्वाद निकाल लेते हैं तो अग्नि बन जाते हैं, अग्नि में से दृश्य निकाल लेते हैं, आकार निकाल लेते हैं तो वायु बन जाते हैं, और वायु में से जब स्पर्श निकाल लेते हैं तो वो शब्द बन जाता है, आकाश बन जाता है, और आकाश में से शब्द निकालने पर वापस वो महातत्व में प्रवेश कर जाता है, और वो महातत्व भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाता है, और प्रतीक्षा करते हैं कि कब अगली सृष्टि का समय आएगा। तो इस प्रकार से भूतवा भूतवा प्रलय में बार बार सृष्टि का निर्माण होता है और सृष्टि का संहार। ठीक है, किसी का प्रश्न है?
आज के श्लोक में यह था कि इस कलयुग में कथा छोटे की प्रक्रिया अवांछित परिवर्तन से छुटकारा पाने और इस तरह के जीवन में स्थाई प्रकृति का प्राप्त करने का सबसे प्रभावकारी साधन है। तो प्रभु जी, इसके जैसे कि अगर हम अपने पारिवारिक स्नेह से छुटकारा पा लेते हैं कुशल सुनकर, तो उससे जीवन में स्थाई संतुष्टता प्राप्त करना इसका मतलब नहीं समझ पाए।
हमारा जो लक्ष्य है वो पारिवारिक स्नेह से स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा जो है वो पारिवारिक स्नेह की है। व्यक्ति मृत्यु के समय तक परिवार के बारे में सोचता रहता है, मरणासन होते हुए मरण शैया पर जब व्यक्ति पड़ा होता है तो भी यही सोचता रहता है कि मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। बार बार इसी विचार में, इसी चिंता में डूबा रहता है और अपने बच्चों को भी बुलाकर बार बार ये समझाता है, देखो अपनी माँ का ध्यान रखना। उसके मन में यही विचार बार बार रहता है। और प्रभुपाद बहुत ही सुंदर एक तात्पर्य दे रहे हैं भगवद्गीता दर्शकों का। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार वायु गंध को उड़ा के लेके जाती है, उसी प्रकार जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार वायु कभी गुलाब के फूलों के ऊपर से निकलती है तो गुलाब की गंध ले जाती है, और कभी गंदगी के ऊपर से निकले तो गंदगी जो दुर्गंध है वो अपने साथ लेके जाती है। उसी प्रकार अगर व्यक्ति पारिवारिक स्नेह में बंधा रहे तो उस पारिवारिक स्नेह की गंध अपने साथ ले जाने के कारण वो अगला भौतिक शरीर उसी प्रकार से ग्रहण करता है। तो ये आवश्यक है कि हम लोग पारिवारिक स्नेह जो आसक्ति है उसको काटें, लेकिन उसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो प्रयास होना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम भगवान के चरण कमलों में अधिक से अधिक अनुराग उत्पन्न करें। जो पारिवारिक स्नेह है हम इसको उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे खाली ग्लास है और उस खाली ग्लास में हवा भरी रहती है, तो ये पारिवारिक स्नेह और जितने भी अनर्थ हैं ये इस खाली ग्लास में भरी हुई हवा के समान है। लेकिन जैसे ही हम इसको कृष्ण कथा या कृष्ण नाम रूपी शरबत जब हम उस ग्लास में भर देंगे तो हमें हवा को अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे हम उस ग्लास को भरते चले जाएंगे भगवत नाम से, वैसे वैसे जो अनर्थ रूपी हवा है अपने आप उस ग्लास से बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार अगर हम भगवान के नाम में, भगवान का नाम और कृष्ण कथा को अच्छी तरह से सुनने का प्रयास करेंगे तो हमें पारिवारिक स्नेह का बंधन काटने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और भगवान इसकी पुष्टि जो है श्रीमद् भागवतम में हुई है, जिसमें कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में करता है जनयति ही आशु वैराग्यम ज्ञानम च अहेतु। जो भगवान की भक्ति में जुड़ता है, वासुदेव भगवती, जो भगवान के भक्ति में जुड़ता है उसको जनयति ही आशु वैराग्यम। आशु का मतलब है बहुत जल्दी, तुरंत तीव्र गति से। जनयति का मतलब है उत्पन्न होती है। जनयति ही आशु वैराग्यम, उस व्यक्ति जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है अच्छी तरह से अपराधों से बचकर विनीत भाव से, उसके हृदय में बहुत शीघ्र ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाते हैं। वैराग्य का अर्थ है देहांत बुद्धि से अपने परिवार से जो आसक्ति है उससे, परिवार से आसक्ति से मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि अपने दायित्वों से मुख मोड़ लेना। जो दायित्व है, जो किसी आश्रम के कर्तव्य है, उनको अच्छे से निभाना बना। तो वैराग्य के नाम पर और घर से आसक्ति छोड़ने के नाम पर अपने कर्तव्यों पर मुख मोड़ना वो अच्छी बात नहीं है। तो इसको अपने जीवन में कैसे उतारा जाए, उसके लिए एक दक्ष भक्त के निर्देशन की आवश्यकता होती है। हर एक व्यक्ति को एक दक्ष भक्त से पूछना चाहिए, गुरु से पूछना चाहिए कि वो किस प्रकार अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। हर एक व्यक्ति के जीवन की विलक्षण परिस्थितियाँ होती हैं, कोई दो भक्तों की एक जैसी स्थिति नहीं होती। हर एक व्यक्ति को अलग से मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसीलिए हर एक भक्त का ये कर्तव्य है कि वो व्यक्तिगत रूप से अपने गुरु से ये जिज्ञासा करे कि मुझे अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। तो प्रश्न है कि हम जो भक्ति में जुड़ते हैं, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि कोई जबरदस्ती हमें बांध कर लगा रहा है। सो ये प्रश्न अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से पूछा था कि ये प्रश्न, मैं बांध नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा लगता है बलात् नियोजिता कि कोई बलपूर्वक मुझे बांध लगा है। तो अर्जुन के कहने का तात्पर्य ये था कि कृष्णा ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे पाप में लगा रहे और फल मुझे भुगतना पड़ेगा। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भगवान ने कहा कि देखो, मैं आपको पाप में नहीं लगा रहा, मैं तो केवल आपकी सहायता कर रहा हूँ। तुम दृष्टा अनुमंता च, भगवान अनुमति देते हैं, भगवान साधन प्रदान करते हैं, लेकिन जो पाप प्रवृत्ति है, पाप करने की इच्छा है, वो जेली अपनी होती है। तो वो इच्छा कहाँ से आती है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं काम एश क्रोध एश, ये जो काम और क्रोध है, एक दो वस्तुओं के कारण रजोगुण समुद्भवा, और जो रजोगुण से उत्पन्न है, इन दो कारणों के कारण जो है व्यक्ति न जानते हुए भी पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। और जो काम वासना है, ये अहम व्यक्ति से विशेष रूप से प्रकट होती है। तो हमने इसकी चर्चा की कि जो कृष्ण कथा है वो किस प्रकार जो है व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है, क्योंकि हमने बात किया था कि भगवान कृष्ण बहुत ही कृपा करके अपनी सारी शक्तियाँ इसमें निवेशित की। तो जिस प्रकार लोहे को आप आग में रखेंगे तो लोहा धीरे धीरे आग के कुणों को आग में शांत कर लेता है, उसी प्रकार हम लोग अगर कृष्ण भावना भावे जीवन बिताएंगे, कृष्ण कथा का श्रवण और कीर्तन करते रहेंगे, तो हमारा जो चेतना है उसका आध्यात्मिकरण हो जाएगा। और ये बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार लोहे को आग में रखने से लोहा आग के गुण ले तो लेता है, लेकिन अगर लोहे को आग से बाहर निकालना चाहे तो वापस वो ठंडा हो जाता है, उसमें आपके गुण नहीं रहते। उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित बनने का मतलब ये नहीं है कि एक दिन माला का जप कर दिया या एक दिन कथा सुन लिया। अपने जीवन को इस प्रकार से ढालना चाहिए कि हम लोग निरंतर भगवान का नाम लेने में, भगवत कथा सुनने में प्रवृत्त होते रहे, लगे रहे। तो जिस प्रकार लोहे में आग के गुण रखने के लिए उसको हमेशा आग के संपर्क में रहना पड़ेगा, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित रहने के लिए हमें हमेशा भक्तों के संग में रहना पड़ेगा। स्थायी लाभ से तात्पर्य है कि भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा में लगना, जहाँ पर ना तो भूतकाल है और ना ही भविष्य काल है, हमेशा वर्तमान काल ही बना रहता है। और जहाँ पर यद कथवा ना निवर सकते, जहाँ जाकर व्यक्ति दोबारा जन्म और मृत्यु नहीं होती। सो स्थाई भाव में भगवान की शाश्वत सेवा में लगना ही स्थाई लाभ है, और वो लाभ में कृष्ण कथा और कृष्ण नाम सुनने और कीर्तन करने से प्राप्त होता है। आप सबका बहुत धन्यवाद। श्री रघुनाथ की श्रीमद भागवत की।